सोमवार तारीख 21 नवंबर 2011 लेक्चर नंबर 1 5 समय ओम नमः सिद्धेर्य ओम नमः सिद्धेर्य ओम नमः सिद्धेर्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सवसाहूं जमजस जमिदेशे जेन विहाणेन जमि कालं मे नादं जिनेन नियदं जम्मं वाहवमरणं वा संतस्सतं निदेशे तेन विहाणेन तं निकालं मे कोशकदिवारेदुं इन्दो वा सहजिनेन्दो वा एवं जो निश्चयदो जानदि दौवाणि सौपज्जाये सोषद्दिट्ठि शुद्धो जो शङ्कदिशोः कुदिति। ये प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय अपने स्व समय में ही होती है, उसको टालने को कोई समर्थ नहीं है। और ये बात हमें जिनागम के जो अद्भुत सिद्धांत है उसके द्वारा नक्की करनी है। जिसके ऐसा तत्व निर्णय होता है कि ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, तो उसको सम्य दृष्टि कहा है। और मिथ्या दृष्टि जब तक निर्णय नहीं होता तो उसे लगता है हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि निमित्त से ही कार्य होते हुए बाह्य में दिखाई देते हैं। और निमित्त नहीं होगा तो कार्य कैसे होगा? देखो, अभी इंजेक्शन दिया मॉर्फिया का और अभी वो पेशेंट बेहोश हो गया। अभी तो मैंने दवा खा ली और जब जब मैं दवा खाता हूँ तब तक मेरा बुखार कम होता है, ऐसी ही इस जीव की मान्यता है। क्योंकि वैसे ही देखने में आता है, ऐसा ही लगता है। लगना बात अलग है और उसकी एक्चुअली वस्तु स्थिति रियलिटी अलग बात है। जो जो कार्य होता है वो उपादान से निज शक्ति से ही होता है और वहाँ ये पांचों ही समवाय उपस्थित होते ही होते हैं। निमित्त नाम का भी वह है, उसकी प्रेजेंसी है, परंतु वो निमित्त भी किसी अन्य द्रव्य की पर्याय है। उस पर्याय को भी कोई आगे पीछे नहीं कर सकता है ना? तो अभी हम देखेंगे ये सब पांच समवाय जानने से क्या क्या फायदा है, उसकी बात हम देखेंगे। ये मेरे में हिंदी में 114 पृष्ठ है, जहाँ वो इंग्लिश में एक लिखा है ना, टाइम इज अ फोर्थ डायमेंशन, उसके बाद 113 पर मिला बापू जी को मिला। उसके बाद हाँ, इस प्रकार स्वभाव, निमित्त, पुरुषार्थ, काल लब्धि और भवितव्य, इन पांच प्रकार के कारणों का अर्थात पांच समवायों का स्वरूप हमने देखा। इन कारणों के समूह को ही पांच समवाय कह दिया है। जब जब कार्य होता है तब तब ये पांचों ही कारण होते ही है। जब जब कहने का कारण वो तो हर समय पर्याय हो रही है और हर द्रव्य की हो रही है, तो वहाँ ये पांचों ही कारण स्वयं में वो होते ही होते हैं। कोई भी कार्य कारण के बिना नहीं होता, ये तो वस्तु स्थिति है और कारण के अनुसार कार्य होता है। परंतु तो कितने कारण है? वहाँ पांच है। हमें कितना दिखाई देता है? मात्र निमित्त ही दिखाई देता है, अन्य कारणों का हमें पता ही नहीं है। और सच्चा कारण तो वही है, निमित्त तो उपचार से कारण कह दिया जाता है। तो कहते कार्य कारण के बिना नहीं होता, जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य होगा। अब ये पांचों ही समवाय पर घटित करेंगे, पांचों ही है वहाँ पर। जैसा स्वभाव, यानी जैसा स्वभाव है वैसा कार्य होगा। तो जीव में जो अनंत गुण है उनकी जो पर्याय है, जैसे ज्ञान गुण की पर्याय जानना 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 है, श्रद्धा का मानना 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 है, चारित्र की स्थिरता स्थिरता, हरेक गुण की जो अपनी अपनी पर्याय है, जो स्वभाव है, वही प्रकट होगा। पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण है ही नहीं है, तो हल्का भारी रूखा चिकना वगैरह जो या खट्टा मीठा जो है, उस रूप पुद्गल जीव कभी भी परिणमित नहीं होगा, उसमें वैसा स्वभाव ही नहीं है। समझ में आती बात? जिसमें नहीं समझे, पुद्गल में कौन सा स्वभाव है? स्पर्श रस गंध वर्ण। तो ये काला पीला आदि रूप कौन परिणमेगा? उसका उस रूप परिणमाने का स्वभाव किसमें है? तो पुद्गल में। कि जीव कभी काला पीला होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं? उसमें वैसा स्वभाव नहीं है। बस जीव में ज्ञान जानना 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 रूप परिणमने का स्वभाव किसका है? जीव का है। सुख या दुख रूप परिणमने का स्वभाव किसका है? तो जीव का है, क्योंकि सुख गुण जीव में है। वो स्वयं अपने पर्याय में सुखी या दुखी होता है, स्वभाव या विभाव रूप परिणमित होती है। तो विभाव रूप हो या स्वभाव रूप, द्रव्य ही परिणमित होता है। तो जैसा स्वभाव वैसा कार्य, पांचों ही समवाय पर घटित करना है, सर्वथा एक पर नहीं। अब आगे का क्या है? जैसा पुरुषार्थ वैसा कार्य। यहाँ पुरुषार्थ करे मिथ्यात्व का, पुरुषार्थ करे क्रोध मान माया लोभ का, उसका भी अपना पुरुषार्थ होगा। उस समय जीव उस रूप परिणमित हो रहा है, वो वैसा पुरुषार्थ चल रहा है। यानी पुरुषार्थ करे खोटे परिणामों का और हो जाए सम्यक दर्शन, ये कैसा होगा? पुरुषार्थ करे शुभ भाव का और शुद्ध भाव प्रकटे, ये कैसे होगा? नहीं होगा। तो जैसा पुरुषार्थ वैसा कार्य, जैसी काल लब्धि वैसा कार्य। काल लब्धि किसको कहा हमने? ये द्रव्य के जो अनादि अनंत पर्यायों का क्रम है, उनमें विशिष्ट समय में कौन सी पर्याय होगी, उस समय की जो योग्यता कैसी है, किस पर्याय रूप परिणमने की योग्यता है, उसको काल लब्धि कहा। तो जैसी वहाँ पर्याय की योग्यता है वैसा ही कार्य होगा। इसलिए क्या कहा? जैसी काल लब्धि वैसा कार्य, जैसा भवितव्य वैसा कार्य। भवितव्य ने होने योग्य पर्याय ही होगी, अन्य नहीं होगी। तो जैसा भवितव्य वैसा कार्य, और जैसा निमित्त वैसा ही कार्य होता है। निमित्त को भी लिया साथ में, क्योंकि हम देखो, क्योंकि जो कार्य होने वाला है वैसा ही निमित्त। निमित्त तो हम उसी को कहते हैं कि उस कार्य में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ गए, तो जो कार्य होगा उसी का निमित्त बताया जाएगा। और कार्य होता है तो उसका उचित निमित्त होता ही होता है। जैसे यहाँ सम्यक दर्शन रूपी कार्य चल रहा है और उसके कुदेव कुदेव कुशास्त्र कुगुरु आदि की श्रद्धा चल रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जैसा यहाँ कार्य हो रहा है वैसा उचित निमित्त भी वहाँ उस समय है। इन्हें ये पांचों ही होते हैं, किसी एक से नहीं होता, सर्वथा। इसलिए क्या कहा? ये वाक्य फिर पढ़ेंगे हम। जैसा स्वभाव, जैसा पुरुषार्थ, जैसी काल लब्धि, जैसा भवितव्य, जैसा निमित्त, वैसा ही कार्य होता है। हम कहेंगे जैसी काल लब्धि है परंतु जीव पुरुषार्थ नहीं करेगा, तो हमारा भवितव्य तो होने आया पर उस समय वो उचित निमित्त नहीं मिला, तो ऐसा ही लगता है ना। प्रश्न क्या उठते हैं? देखो और क्या क्या प्रश्न उठते हैं आगे देखो। मुझे पता है कि पांच समयों के नाम और स्वरूप सुनकर तुम्हारे मन में अनेक सवाल उठेंगे। तुम कहोगी हमें यदि विशिष्ट कार्य करना हो तो हम इन पांच समवायों को, इन्हें पांच कारणों के समूह को कहां से ढूंढ निकालेंगे? क्या मान्यता है? हम कुछ चाहते हैं पर्याय, अब ये पांच समवाय हम कहां से लाएंगे? यानी हम कुछ चाहते हैं और हमारे इच्छा के अनुसार हम अपना या पर का परिणमन करना चाहते हैं। ये चाह ही बताती है कि कुछ न कुछ हेरा फेरी करना चाहते, विशिष्ट पर्याय कहाँ देखकर ये कर रहे हैं? ये पर्याय हो रही है और मुझे ये पर्याय नहीं चाहिए, अमुक एक दूसरी पर्याय चाहिए। यानी उसका लक्ष्य कहाँ है? पर्याय की तरफ। यदि वो अपने द्रव्य स्वभाव को समझेगा और यथायोग्य समय में हर पर्याय निश्चित है ऐसा समझेगा, तो उसको पर्याय को पलटाने के ऐसे परिणाम या मैं पलटा सकता हूँ ऐसा भाव ही नहीं होगा। मान्यता की बात है। तो कहाँ से ढूंढ निकालेंगे? दूसरा क्या प्रश्न होता है, हमारी काल लब्धि ही नहीं आई हो तो, जो शास्त्र स्वाध्याय नहीं पढ़ करना चाहता है, अरे ये बहुत अच्छी बात है पर अभी हमारा काल नहीं आया। कहाँ देखकर काल नहीं आया कह रहा है, उसकी रुचि तो पड़ी अभी अन्य चीजों में। हाँ। कहते हमारा काल नहीं आया, काल पाक्यो नहीं। अभी कुछ शास्त्र के शब्द लेकर उसको यूज करता है और मिस यूज और कुतर्क करता है और अपने स्वच्छंद का पोषण करना चाहता है। अन्य चीजों में तो काल आएगा तो मिलेगा नहीं कहता है, जब पैसा मिलना है तब मिलेगा ऐसा तो नहीं कहता है, तो वहाँ तो बिल्कुल डट कर प्रयत्न करता है, है? या वो आटा निकाल के रखा, जब रोटी बननी है तो बनेगी, और वहाँ तो स्वयं उद्यम करता है। तो वैसा जब उसका परिणाम है पुद्गल का होने का, तो यहाँ निमित्त रूप से भी उस जीव को भी वैसे भाव आएंगे। ख्याल में हैप्पी बात है, अन्यत्र तो ये रूल नहीं लगाता। कहाँ लगाता है, मात्र शास्त्र स्वाध्याय में या मोक्ष मार्ग में ये रूल लगाता है, क्योंकि शास्त्र के वचन सुनाएगा तो उसको लगता है नहीं नहीं मैंने बहुत जाना है। कुछ भी शब्दों का यूज करता है। कल भी कोई एक भाई बात भाई बोल रहे थे कि अनेकांत है, अनेकांत है ना, उन्होंने अनेकांत का गलत अर्थ समझ रखा है।
अनेकांत का अर्थ निकाल रहे थे कि सभी शास्त्रों को पढ़ना,
हाँ, सभी सभी को पढ़ना चाहिए, वो अनेकांत हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है, 100 झूठ मिलकर अनेकांत नहीं होता है। वही तो कल एक भाई कह रहे थे, तो दूसरा क्या पढ़ेगा, क्या था अनेकांत का अर्थ नहीं, ये भी सच्चा वो भी सच्चा वो भी सच्चा, सौ वो उनके तो सर्वथा मानने वाले हैं, यानी वो सभी झूठ है, जीरो है, असत्य है, तो 100 असत्यों को मिलाकर एक सत्य होता होगा क्या। वैदिक मानते कि द्रव्य सर्वथा नित्य है, पर्याय है ही नहीं है, और बौद्ध मानते द्रव्य ही अनित्य है सर्वथा, नया नया द्रव्य ही उत्पन्न होता है, वो भी खोटा है। तो जैनियों ने माना वो नित्य भी है अनित्य भी है, तो क्या ऐसा जैनिज्म है। अपेक्षा से बात की, एक ही द्रव्य में किसी अपेक्षा से नित्य है किसी अपेक्षा से अनित्य है, पर्याय की अपेक्षा से, परंतु ये वैदिक का और ये बौद्ध का मिला के जैन धर्म नहीं हुआ है, उसको अनेकांत नहीं कहा, दोनों ही असत्य है, दो असत्यों को मिलकर सत्य कैसे हो सकता है। ना ये अनेकांत संबंधी भ्रमणा चल रही है लोगों की,
किसी इज्म में 1% भी असत्य है तो सारा असत्य है, नहीं उसमें ये आपने जैसा है वो अच्छा है बिल्कुल नहीं,
लोग क्या कहते हैं। हाँ,
और उसमें मान लो कोई एक जहर की बूंद गिर जाए तो उतना उतना चम्मच से निकाल के बाकी खाएंगे क्या, नहीं बाकी तो अच्छा है ना, अभी अभी गिरा है,
अरे वहाँ तो बहुत चतुर है।
हाँ। एक भव बचाने के लिए हम उसको नहीं खाते हैं, और ये अनंत भवों के हम निशात्मक ये लग रहा है उसकी चिंता नहीं
है। क्या है ऐसे कुछ देखा देखी वो तो फैशन चलती है, घर में आई बात है, परंतु हमें अभी हमें सत्य मार्ग हाथ में आया है, तो अभी इधर उधर भटकना की बात छोड़ दो, अभी इसका पूरी तरह से अभ्यास करना, क्योंकि हमें तो इतना ही समय निकाल सकते हैं, और उसमें भी ये पढ़ू वो पढ़ू वो पढ़ू, अरे जो सत्य है आपके हाथ में मिल गया उसको पढ़ना, पहले निर्णय करना, अपना कार्य कर लेना। मुनियों ने भी ये ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने सभी दर्शनों का अभ्यास किया था, परंतु उन्होंने पूरा जीवन ही उस अभ्यास में लगाया है, तो उतना अपना पूरा ग्रहण करने के बाद सभी का अभ्यास करके फिर तुलनात्मक भी शास्त्र लिखे है। मुनियों ने लिखे सभी 6 दर्शन जो हिंदुस्तान में चलते हैं, सभी का कंपेरेटिव स्टडी करके उनके तत्व कौन से हैं और वो झूठ कैसे है ये सिद्ध करके उन्होंने ग्रंथों में लिखे हैं। आपने शायद ऐसे ग्रंथ नहीं पढ़े हुए, मोक्षमार्ग प्रकाशक में 5वां अध्याय है, वैसा ही है, विविध मत समीक्षा, समीक्षा ने उसको उन्होंने कंपेरिजन की है, कौन सा सत्य है कौन सा झूठ है क्यों झूठ है ये सब उसने बताया। ऐसी भी वो कौन सी संयुक्त कौमुदी ऐसी कौन सी पुस्तक है, उसमें भी ऐसी बात है, सभी बौद्ध दर्शन वैदिक दर्शन सभी दर्शनों का हमें मालूम नहीं, इतना डिटेल में वर्णन है, और फिर उनके तत्व कैसे हैं और वो सच्चे है कि नहीं उसकी उन्होंने मीमांसा की। पर हमारे यहाँ इतनी फुर्सत कहाँ है हमें, तो सत्य ही ग्रहण करो ना पहले में पहले, क्योंकि अभी तो इस पोजीशन में नहीं है कि ये सत्य है कि नहीं है, क्योंकि सुनने के लिए अच्छी लगती है बात, वो सच्ची होगी ही ऐसा नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं, देखो क्या क्या, देखो ये समूह को कहाँ से ढूंढेंगे, हमारी कल्लब भी नहीं आई हो तो, या न जाने हमारा भवितव्य क्या होगा, या यदि हमारा भवितव्य ऐसा ही है तो पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है, भगवान ने यदि हमारी देखनी ये बात होनी है तो हम क्यों पुरुषार्थ करें, तो हम पुरुषार्थहीन हो गए, ऐसा मान्यता है कि नहीं जीवों की, या हम पुरुषार्थ तो करेंगे परंतु यदि निमित्त ही न मिला तो, इसका अर्थ क्या है, कोई एक समवाय आ गया और दूसरे नहीं आए तो हम क्या करें, यानी अपने को पराधीन मान रहा है, इसे बेटियों के मुंह में ये सब प्रश्न डाल दिए। वस्तु की स्वतंत्र कारण कार्य व्यवस्था का रहस्य ख्याल में नहीं लेने से इस तरह के अनेक सवाल उठते हैं। क्या कहा, ये सवालों का जवाब क्या, क्या करना चाहिए, तो वस्तु में, वस्तु इन्हें द्रव्य में, किस द्रव्य में, छहो द्रव्यों में ये कारण कार्य व्यवस्था उस द्रव्य में ही पड़ी है, और को कैसे स्वतंत्र है, वो किसी के अधीन नहीं है, पराधीन नहीं है कि ये चीज होगी तो ये कार्य होगा, ऐसे यदि वदि ऐसी बातें ही नहीं उसमें, तो उसका रहस्य ख्याल में नहीं लेने से इस तरह के अनेक सवाल उठते हैं, और कारण संबंधी चिंता से, कौन से कारण, ये पांच कारण बताए हैं, उस संबंधी चिंता, ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, उन्हें जुटाने की चिंता से, क्योंकि हमें तो उपादान तो मालूम नहीं, हमें तो निमित्त को जुटाने की चिंता से, या सुन रखे है काल लब्धि और पुरुषार्थ, उन्हें जुटाने की चिंता से जीव आकुल व्याकुल हो जाता है, यानी वो तो उसी के विचारों में खोया रहता है। बेटियों एक बात सदैव ध्यान में रखो कि तत्वज्ञान सभी आकुलताओं को नष्ट करने वाला है। हम तो सांसारिक कुछ न कुछ उलझन में उलझे रहते हैं, और वो तो अनेक हमको आ मिलते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है, हमें इसकी ये बताओ, तो हमें तत्व ज्ञान सीखो, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों में कुछ न कुछ विचार करते, अपनी कल्पनाओं से ही दुखी होते रहते हैं, और इन सभी दुखों का एकमात्र इलाज क्या है, तत्व ज्ञान। पांच समवायों का स्वरूप जानते ही अनंत आकुलता कम होती है। कितने आकुलता है, अनंत आकुलता, क्योंकि ये अनंत परद्रव्यों के कार्य हो रहे हैं, हमारा भी कार्य हो रहा है, और ये पर्याय तो हर समय नई नई होती है, और यहाँ सभी के संबंध में हमारी आकुलता चलती रहती है। प्रत्येक पर्याय में उस पर्याय के अपने पांच समवाय भी एकत्रित होते हैं, यानी पर्याय तो निश्चित है ही है, उसके पांच समवाय भी निश्चित है, वो स्वयं में वहाँ एकत्रित होते ही है, नहीं हुए तो का सवाल ही नहीं है, वहाँ वे स्वयं ही आ मिलते हैं, एकत्रित होते हैं, कोई उन्हें मिलाकर एकत्रित ला नहीं सकता। इतनी दृढ़ता से बात अंतरंग में धारण करो तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। वस्तु में यानी द्रव्य में अनंत गुण, और प्रत्येक गुण की प्रत्येक समय में नई नई पर्याय, नया नया कार्य कब होता है, निरंतर चलता रहता है, निरंतर ने एक समय का अंतर छोड़े बिना, हर समय हर समय हर समय ये पर्याय अपनी इच्छा अनुरूप नहीं होती, परंतु नियत यानी निश्चित वस्तु व्यवस्था के अनुसार होती है। इच्छा तो क्या है, इच्छा कौन से गुण की,
हाँ हमारी इच्छा से क्या,
हाँ तो इच्छा क्या है, स्वभाव है कि विभाव है, कौन से गुण की पर्याय, हाँ चारित्र गुण की विभाव पर्याय, यानी वो विभाव करते हैं, कोई इच्छा करते हैं, अपने कल्पना से कुछ मान लेते हैं और उसके अनुसार अपना या पर का परिणमन करना चाहते हैं, तो कहते हैं कि पर्याय अपनी इच्छा अनुसार नहीं होती, ना अपनी होती ना पर की होती, तो कैसी होती है, निश्चित वस्तु व्यवस्था के अनुसार होती है। वस्तु ने अनंत द्रव्य है, उन प्रत्येक में अपनी अपनी पर्याय होने की क्षमता है, निश्चित पर्याय निश्चित समय में होगी ही होगी, यदि मैंने ऐसा किया हो तो वैसा हो जाता। इस तरह अगर मगर की भाषा या यदि तदी की शक्यता वस्तु की स्वतंत्र कारण कार्य व्यवस्था में नहीं होती। हम तो ऐसे से सही है, मैंने ऐसा किया होता तो वैसा हो जाता। क्या कह रहे, मैंने ये चुक गया चुक गया, या वो मैं उस डॉक्टर के पास हो जाता तो अच्छा होता, नहीं गया तो मुझे ये बीमारी हुई, मैं वो दवाई लेता तो अच्छा होता, ऐसे चलता है ना। अब ये फॉर एग्जांपल मैंने बताया, परंतु ये तो दिन भर हमें ऐसे विचारों में खोए रहते हैं। तो क्या है ऐसी पॉसिबिलिटी कि हम ऐसा करते तो जरूर कोई कार्य अन्य हो जाता। तो कहते ऐसी पॉसिबिलिटी वस्तु की स्वतंत्र कार्य कारण कार्य व्यवस्था में नहीं होती। प्रत्येक द्रव्य की कारण और कार्य व्यवस्था जो है वो द्रव्य में ही निबद्ध है। कोई ऐसा करता तो ये चेंज हो सकता था, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ तो सब कुछ नियत है, निश्चित है। कारण भी नियत है और कार्य भी नियत है, निश्चित। कार्य तो है ही है, उसके कारण भी नियत है। तो फिर करने धरने के लिए रहा ही क्या? आपने बहुत बार सुना होगा, करू करू यानी मरू मरू, सुना हुआ विदेह के प्रयोजन में बहुत बार आता है कि करू करू कि वो मैं ये करना ये करना ये करना ये करना, तो कहते तो शांत हो जा। करू होने वाले तो कार्य हो ही रहे हैं, मैं करूं मैं करूं मैं करूं की चिंता में ही ये जीव व्यग्र हो रहा है। अभी हमने काल लब्धि और भवितव्य इन दो कारणों की चर्चा करते हुए देखा था, प्रत्येक पर्याय का स्व समय उसका जन्म क्षण निश्चित है। उसको प्रवचन सार में जन्म क्षण कहा है, पर्याय का जन्म क्षण वो अपने स्व समय में निश्चित रूप से उत्पन्न होती ही है। यानी वो समय भी निश्चित है उसको काल लब्धि कहा, और वो पर्याय भी निश्चित है उसको भवितव्य कहा। आगे पीछे नहीं हो सकता, उसी प्रकार कौन सी पर्याय होगी यह भी निश्चित है। यानी वो उसका स्व समय भी निश्चित है और पर्याय भी निश्चित है। द्रव्य की पर्यायों के अनादि अनंत प्रवाह क्रम में प्रत्येक पर्याय स्वयं की योग्यता से होने वाली ही होती है। यानी होने वाली ही होती है, अन्य नहीं होती। यानी होने वाली होकर ही रहेगी, उसको टाल भी नहीं सकते। और जो अनादि, हमने देखा ना अनादि अनंत प्रवाह है, हर समय की पर्याय तो निश्चित है ही, उसका समय भी निश्चित है, तो उस समय के पांचों समवाय भी वहाँ निश्चित होगे ही होगे। यह पर्याय शक्ति अथवा योग्यता रूप धर्म प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र अपना अपना विद्यमान है, वह नया प्रकट नहीं होता। यानी हम कुछ पुरुषार्थ करके ये पर्यायों का क्रम बदल दे जाएंगे तो ऐसे हो ही नहीं सकता। और प्रत्येक द्रव्य का, भले अनंत जीव है, हर एक जीव का अपना जो सीक्वेंस है पर्यायों का क्रम, निश्चित रूप उसका अपना काल कहेंगे, वो निश्चित है। हमने द्रव्य का काल कितना कहा, तो अनादि अनंत। हम दो जीव द्रव्यों पर घटित करते, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। तो ए नाम का जीव द्रव्य बी नाम का जीव द्रव्य है क्या, तो कहते नहीं, ये इसका जीव अलग है उसका जीव अलग है, उसका द्रव्य अपना है इसका बी द्रव्य अलग है। दोनों का क्षेत्र कितना है, तो असंख्यात प्रदेशी वही है का अपना अपना अलग है, अपना अपना अलग है, इसके असंख्यात प्रदेश अलग है, इसके असंख्यात प्रदेश अलग है। दोनों का काल कितना है, तो अनादि अनंत सेम है क्या,
नहीं।
काल किसको कहेंगे, हर समय की पर्याय की योग्यता है उसको काल कहा। तो इसके हर समय की अपनी अपनी योग्यता अलग है कि नहीं,
अलग है।
हाँ, वो भले अनादि से अनंत है वो बात अलग है, हर एक का अपना अपना पर्याय का क्रम, पर्याय का सीक्वेंस, होने वाली पर्याय भिन्न भिन्न है, तो हर एक का काल भिन्न भिन्न है। हर एक के भाव, भले वो अनंत गुण समान हो गए, परंतु वो अपने अपने भिन्न है ना, कि इसके गुण ये इसी के है, वैसे ही इसमें है, परंतु वो अपने अपने। तो हर एक द्रव्य का अपना अपना द्रव्य क्षेत्र काल और भाव सब भिन्न भिन्न है, हर एक का अपना परिणमन अपने में अपने से हो रहा है, सब कुछ निश्चित है। तो मेरी जल्दी पर्याय गई तो दूसरे की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, अभी किसी का मोक्ष जल्दी हो गया है, अभी कोई जीव अभी मान लेते ये गुरु वाला द्रव्य है, इसने इसको पढ़ाया और फिर ये जल्दी मोक्ष गया, अभी गुरु के भाव बाकी है, चार भाव बाकी है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता?
हो सकता है।
हाँ, तो हर एक का अपना अपना क्रम अलग है कि नहीं? ये मेरे आगे निकल गया, ये बात कहाँ से आई? ख्याल में आता है, जिसने ये निर्णय किया है उसको ऐसे भाव होते भी नहीं, विदिशा वाले वगैरह वस्तु का स्वरूप जानता है। हमें मालूम है चेलना रानी और ये सैनिक राजा, सैनिक राजा तो अन्यमति था, जिन धर्म का द्वेषी था तो जिन यानी मुनियों पर उपसर्ग किया, यशोधर मुनि के ऊपर उपसर्ग किया, सातवें नरक का बंद किया, फिर बाद में उसको पश्चाताप हो गया, मुनि के दर्शन के उनका उपदेश ग्रहण किया, समय दर्शन हुआ, अभिक्षायिक समय दर्शन हुआ, तीर्थंकर प्रकृति वाने लगा, वो सब हमने देखा। चेलना तो ऑलरेडी समय दृष्टि थी पहले से, अब वो समय दृष्टि थी तो वो तो देव में चली गई, क्योंकि देव का बंध इसमें तो पहले नरकायु बांधी थी, बाद में भले सम्यक तो प्राप्त किया, नरकायु तो छूटेगी नहीं, अब जाके 84,000 वर्ष की वहाँ आयु भोग रहे। और ये चेलना समय दृष्टि अगर जाती है तो सौधर्मादि ऊपर के विमानों में चली जाती है, तो उन्होंने वहाँ सागरों की कितनी आयु बांधी होगी, है ना? यानी असंख्यात वर्षों की है वो तो निश्चित है। और ये 84,000 वर्ष में यहाँ आएंगे, तीर्थंकर होकर मोक्ष चले जाएंगे, और बाय दैट टाइम वो सागरों की आयु वहाँ भोग रही है, पता नहीं उसके आगे कितने भोग बाकी है, ऐसा होता है कि नहीं? तो हमें ऐसा किसी को देखकर द्वेष भी नहीं करना चाहिए, क्या मिथ्या दृष्टि है, क्या तीव्र मिथ्या दृष्टि है, क्या इतना कहते सुनता नहीं है, किसी का कौन सा पर्याय क्रम है हम समझ नहीं सकते। अभी तो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, मनुष्य है, और कोई यहाँ चींटी है, हो सकता है कि अपने पहले मोक्ष चली जाए, वहां से कौन से मनुष्य में पर्याय में आगे क्या होगा उसका, वी डोंट नो एनीथिंग। हर एक का अपना पर्याय का क्रम अलग अलग है, इतना समझते हैं तो भी दूसरों को देख देख कर हमें कषायित नहीं होते हम, ऐसा लगता है ना कितने बार उसको बताए कुछ नहीं समझता है, ऐसा होता है कि नहीं? अपने कौन सा जीव कब पलट जाएगा, उसको कैसा पर्याय का क्रम होगा कह नहीं सकते। यहाँ क्या लिखा देखो, हम देखेंगे।
सबसे बड़ी स्टोरी आती है पारस का जो कमट की है ना।
हाँ, 10-10 भवन तक उसका बैर चला, एक तरफ ही था।
हाँ,
फिर भी चला।
तो शास्त्रकार आखिर में कहते हैं कि इस कमट पर आप द्वेष मत करो, क्योंकि अभी उसका पुरस्कार मोक्ष तरफ शुरू हो रहा
है। ऐसा ही है, क्योंकि हम जो कोई भी घटना देखते तो किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष होता है, ये तो सबको मालूम है। रामायण पढ़ते हैं तो रावण के प्रति द्वेष द्वेष होता है, और सीता के प्रति राम के प्रति हमें राग हो जाता है। अभी राम कहाँ है? मोक्ष में चले गए। अभी सीता है स्वर्ग में, रावण है नरक में। वो सीता का जीव वहाँ जाकर उनको उपदेश देता है धर्म का। तो वहाँ जाकर वहाँ उपदेश देते हैं, तो उपदेश देते हैं नहीं, वहाँ उनका तो आपस में वैरभाव मिट गया समझो, और यहाँ हम क्या करते हैं, रावण के पुतले बनाकर जला रहे हैं। यानी हम उनको याद करके उनकी स्टोरी पढ़ के एक के प्रति द्वेष और एक के प्रति राग कर रहे हैं, यानी हम यहाँ अपने ही कषाय में जल रहे हैं। हाँ, वो रावण को जलता है कि नहीं जलता वो बात अलग है। यहाँ क्या देखे, अभी हम यहाँ आते हैं अपने प्रत्येक द्रव्य का अपना स्वतंत्र है। आगे का परिवार केवल विशिष्ट पर्याय निश्चित है, इतना ही नहीं अपितु पूर्ववर्ती पर्याय कि जिसके व्यय पूर्वक वर्तमान पर्याय उत्पन्न होती है वह भी निश्चित है। ये तो हमने पहले भी देखा था, यदि 10 नंबर की पर्याय निश्चित है तो 9 के व्यय पूर्वक 10 की पर्याय होती है, तो 9 पर्याय भी 9वे नंबर की भी निश्चित है, उसकी पूर्व की सभी पर्याय भी निश्चित है। इसी को विधि प्रक्रिया ने प्रोसेस, क्योंकि एक का व्यय होकर दूसरी का व्यय होकर तीसरी, वो तो श्रृंखला जिसको कहेंगे, ये क्रम जो है वो भी निश्चित है, उसको भी कहीं कहीं पुरुषार्थ कहा है। इससे सिद्ध होता है कि पुरुषार्थ भी निश्चित है। प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव तो अनादि अनंत त्रिकाल एक रूप ही रहता है, वह नियत है, निश्चित है। क्या कहा, यहाँ स्वभाव की बात है, यहाँ किसी पर्याय की बात नहीं है। क्या कहा, स्वभाव। हाँ,
अगला पैराग्राफ में हमने वहाँ लिखा, आपने लिखा है विधि प्रक्रिया अथवा पुरुषार्थ कहो से, तो पुरुषार्थ पर निश्चित है।
हाँ,
तो वो ही क्षण जो पुरुषार्थ हम करने वाला है
वो निश्चित है, वही पुरुषार्थ होगा, क्योंकि वो पर्याय होती ही है और पुरुषार्थ से ही होती है। पुरुषार्थ वन ऑफ द पांच समवाय है, तो वैसा ही उसी पर्याय का पुरुषार्थ होगा उस समय। मान लेते अभी नेक्स्ट समय में किसी जीव को भी अभी पांच मिनट के बाद उसको समय तो होने वाला है, तो उसके पूर्व वो तत्व का जो उसने समझा है तत्व, उसके ऊपर उसके विचार चलेंगे, उसी के ऊपर विचार करते करते फिर कुछ विकल्पात्मक भूमिका होगी मान लेते, और फिर वो भी छूटेंगे, उसके वो सारे प्रायः लब्धि करण लब्धि तो सभी होकर उस समय निश्चित रूप से उसको समय तो प्राप्त होगा। तो वो पुरुषार्थ तो उसी समय वैसा होगा उस जाति का, उसके पूर्व समय में वो जो जिस करण लब्धि में है उस जाति का पुरुषार्थ चल रहा है, उसके पूर्व में तत्व निर्णय का पुरुषार्थ चल रहा है, उसके पूर्व में वो देशना सुनी थी उसके उसको उसने ख्यालों में लिया उसका पुरुषार्थ चल रहा है। तो हरेक पर्याय का अपना पुरुषार्थ तो उसी पर्याय के समय में हो रहा है। इस तरह से यहाँ क्या लिए, यहाँ तो पूरी श्रृंखला ली पर्यायों की, उसको उसमें पूरा प्रोसेस एक समय में यहाँ कार्य हुआ तो उसके पूरे उसकी कौन सी किस पर्याय का व्यय व्यय होते आया, तो उस पूरे को उन्होंने उस श्रृंखला को लिया है। जैसे घड़ा बना विशिष्ट समय पर, उसके पहले वो मिट्टियों की सारी अवस्थाएं उसको पूर्व पर्याय के रूप में लिया, फिर उसका फिर पिंड बनाया, फिर उसको चाक पर रखा गया, फिर उसको ऐसे ऐसा शेप दिया, फिर अंदर से वो पोला कर दिया, ये सारी एक 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 पर्याय पूर्व में थी, फिर जाके वो घड़ा बना, तो ये भी सारी निश्चित है। तो ये पूरा प्रोसेस लिया उसने, उसको प्रोसेस में ले लेना, विधि में ले लेना। ऐसे हर पर्याय की अपनी अपनी उसकी पूरी विधि भी वहाँ निश्चित है। इसको पूर्व पर्यायों के एक एक के एक का वे हुआ दूसरी उत्पन्न हुई एक का वे हुआ उसकी ऐसा पूरा ही प्रोसेस ले लिया। फाइनल रिजल्ट हम किसी विशिष्ट कार्य की बात कर रहे हैं, उसके पूर्व के कार्य उसकी पूर्व के पर्याय भी निश्चित है। तो उस समय उन पर्यायों का पुरुषार्थ चल रहा था, पूर्व पर्यायों का, क्योंकि हम समझाने के लिए किसी एक विशिष्ट पर्याय की बात करेंगे, इसलिए पूर्व के पर्याय को हम पूर्व पर्याय कहेंगे। यानी 10 नंबर की पर्याय की बात करेंगे तो 9, 8, 7 सारी पूर्व पर्याय हुए, परंतु 9 नंबर की पर्याय भी अपने स्व समय में उसके 9 नंबर के पुरुषार्थ से हो रही है नी? तो 9 नंबर के समय वाला निमित्त भी वहां पड़ा है। ऐसे हरेक में लगा दी। देखते प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव तो अनादि अनंत त्रिकाल एक रूप ही रहता है, वह नियत है, निश्चित है, इस बात को बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। स्वभाव ही स्वभाव है, वो अनंत गुणों का पिंड, उसमें जो कुछ योग्यता पड़ी वो सब पूरा ही स्वभाव में आ गया। तो स्वभाव अनादि अनंत से है ना, वही तो अभी है। स्वभाव में तो कोई चेंज होता ही नहीं है, चेंज कहाँ होता है, पर्याय में होता है। और वो कौन सा चेंज होगा वो भी निश्चित है, और कब होगा वो भी निश्चित है, परंतु स्वभाव में तो कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन यानी जो उत्पाद व्यय रूप जो परिणाम होता है वो तो पर्याय उनकी बात है, पर्याय ने कार्य, परंतु उसका जो स्वभाव है प्रत्येक द्रव्य का वो अनादि अनंत एक सदृश परिणाम जिसको हम कहेंगे, उसमें कोई वदघट नहीं होती। कोई पूछेगा कि स्वभाव पुरुषार्थ काल लब्धि भवितव्य सारा कुछ निश्चित है, परंतु निमित्त को हम ढूंढेंगे तभी और हम चाहेंगे तब वही हम ला सकते हैं ना, जुटा सकते हैं ना, क्या पूछा। बाकी तो निश्चित है, हमने स्वीकार कर लिया। अब बात रही निमित्त की, तो निमित्त को हम ढूंढेंगे तभी ला सकते हैं ना, एक प्रश्न, और दूसरा हम चाहेंगे वही निमित्त ला सकते हैं ना, आप क्या कहते हैं।
निश्चित
है, हम चाहते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करना, और जन्म लेने चाहते महाविदेह में श्री मंदिर भगवान के पास। हमने अपना निमित्त भी निश्चित डिक्लेयर कर दिया, क्यों? यानी ये कहाँ भूल हो रही है? अभिप्राय में, क्योंकि अभी तो करना नहीं चाहता ना, और आगे का मैं भव ले लूंगा, फिर वहाँ जाऊंगा, फिर वहाँ सुनूंगा। अरे जहाँ सब कुछ उपलब्ध है, अवसर आ चुका है, वहाँ तो सुनना नहीं चाहता है। और ऐसे क्योंकि शास्त्र में कुछ कुछ सुन के रखा है, अपनी कल्पना से मान लेता है कि वहाँ जन्म ले लूंगा। तो जन्म कहाँ लेना तेरे हाथ की बात है?
नहीं।
कौन से परिणाम से कहाँ जन्म लेता है मालूम है? और माने ये परिणामों में तो फिर असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं, और वो कौन से आयु के बंध के समय कौन सा आयु बंध होता है कब कैसा पता चलेगा? हमारी आयु कब बंधने वाली है कैसा पता चलेगा? तो आयु में ही केवल परिवर्तन करना चाहता है, और बाकी कैसा भी बंध हो तो चलेगा? चलने ही बात, ये तो 24 घंटे हर समय बंद हो रहा है, हर समय के परिणाम से बंद हो रहा है। और मात्र हम वहाँ जन्म लेंगे, तुम्हारे कहने से होगा क्या जन्म? परिणाम तो चाहे जैसे हो रहे उलट पुलट, और उसमें कब कैसी आयु बंधेगी वो कोई कह नहीं सकता है, परंतु उसकी मान्यता में ये सारी भूले चल रही है। अभी इतने बुद्धि का उसका उघाड़ है, अभी जो सब कुछ ग्रहण कर सकता है, समझ सकता है, अपना कल्याण कर सकता है, उसे छोड़कर वो भविष्य के कुछ वायदे करना चाहता है, इसका अर्थ उसका कार्य नहीं होने वाला है, तो उसकी ऐसी बुद्धि हो गई। हम क्या कहेंगे? कि उसका अभी दूर है समय दर्शन। क्यों? क्योंकि उसकी ऐसी विपरीत बुद्धि हो रही है। हम उल्टा क्या कहते? किसी पे गुस्सा करते, अरे इतना समझा रहे, समझ नहीं रहा। तो समझ नहीं रहा है, ये उसकी पर्याय अभी उसकी योग्यता से चल रही है। जब उसको ऐसी बात सच लगेगी, समझेगा, तब उसका पर्याय का क्रम भी वैसा उस तरफ चला जाएगा, बिल्कुल वैसा होगा। और वो हमारे समझाने से वो समझा ये बात है ही नहीं है। जो समझ रहा है वो अपने पुरुषार्थ से, अपने काल लब्धि पर, अपने पर्याय की योग्यता से समझ रहा है, है? और जो नहीं समझ रहा है उसके अभी वो दूसरी किसी पर्याय की योग्यता से वैसी पर्याय चल रही, नहीं समझने की पर्याय चल रही है। तो इसलिए हमें उसमें क्या है, वो तो वस्तु की व्यवस्था हमने समझ ली है। प्रत्येक द्रव्य का परिणाम तो स्वतंत्र है। हम चाहते हमारे बच्चे भी समझे, हमने समझा तो तभी, अरे हम किस उम्र में समझे हैं? तो हमने जितना समझा है उससे आगे जाने की हम कोशिश करें। दूसरा क्यों नहीं समझता, दूसरा क्यों नहीं समझता, उसकी चिंता छोड़ देना। अरे ये ऐसा है कि हमारा कल्याण कैसे हो, इसी भावना से हमको ये सीखना, और ये हमें अपने पर लगाने हैं सर, दूसरों को नहीं। जो जिसका जब होना है वो तब होना ही वाला है, उसमें हम कोई कर नहीं सकते, उसको ला नहीं सकते। नहीं, राग आना बात अलग है, राग यानी उसके प्रति हमें लगाव है, तो हम चाहते हैं अरे हम बहुत देरी से ये समझे, तुम अभी समझो। हमने बचपन में बहुत तकलीफ सहन करके विद्या प्राप्त की, हम कहेंगे पैसे की कुछ प्राप्त हुए, हम अपने बच्चों को सब कुछ जल्दी देना चाहते हैं कि वी मिस सो मेनी थिंग्स। तो क्या करते हैं, बच्चों को दें, क्योंकि बच्चों के प्रति राग है ना, उनको सभी चीजें उपलब्ध कराना चाहते, जो हमें नहीं मिली थी वो भी उनको देना चाहते। हम नहीं मिली थे तो नहीं, ये तो ये इजी हो जाएगा, आप इतनी पढ़ाई करो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई बहुत गरीबी में बहुत पढ़ गए, और फिर उसको बच्चों को कहता है कि हमें बहुत तकलीफ है, तू पढ़ाई कर, और उसका पढ़ाई में मन नहीं है, वो इधर उधर भटकता रहता है। ऐसा भी होता है कि नहीं होता है? तो ये लगाव तो रहेगा अपने बच्चों के प्रति, समझाने के भाव तो होंगे, परंतु उससे कार्य होगा ये बात नहीं। नहीं होता तो आकुलता करने की कारण नहीं है। तो कभी हम दूसरे को जुटा तो सकते हैं ना निमित्तों को, उसका समाधान यह है, निमित्त तो परद्रव्य की पर्याय है, अर्थात परद्रव्य का कार्य है, और उस कार्य के अपने समवाय हो गए कि नहीं हो गए? होना ही चाहिए। वह भी उसके अपने द्रव्य के स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि और भवितव्य के अनुसार ही होगा, जो सब निश्चित है। अब वो जो निमित्त नाम के परद्रव्य की जो पर्याय हो रही है, उसका अपना भी निमित्त होगा कि नहीं होगा। कल बात आई थी ना, ये मीर को उसको समझा रही थी मैं, ये कर्म का उदय हुआ तो ये तो एनेस्थेसिया, ये जो बाहर से निमित्त दिखाई दिया तो ये उससे हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने कहा निमित्त ही देखना है, नियम रूप निमित्त हमने जिसको कहा था। तो ये कर्मों में ज्ञानावरण का जो वहाँ क्षोक्षम चल रहा था, ज्ञान का उघार कम हुआ, उसमें ज्ञानावरण का आवरण आ गया हम कहेंगे अपनी भाषा में निमित्त रूप से। तो यहाँ ज्ञान की हीनता हुई तो नियम रूप निमित्त क्या है, कर्मों को देखना हमको, और बाह्य निमित्त क्या है, अनिश्चय, यानी अनेक निमित्त होते हैं ना, यानी ये कर्मों का वहाँ वैसा परिणमन हुआ तो उसका कार्य कराने वाला कोई बाह्य एजेंट है मेरी भाषा में। तो इसको अभी शास्त्र में इसके हर कर्म के बाह्य निमित्त है, उसको कर्म के नो कर्म कहे। वो बहुत सारे होते, ज्ञानावरण के क्या है, दर्शनावरण के क्या है, अंतराय के क्या है, मोनी के क्या है, सब उसमें विवेचन आता है। जैसे यहाँ क्रोध कर्म का, क्रोध हुआ तो कर्मों में क्या है, क्रोध कर्म का उदय है, और बाह्य में क्या है, हमारा बच्चा हमारे नहीं सुन रहा है तो उसके ये बाह्य निमित्त, इससे क्रोध हुआ लगता है ना, ये भी निमित्त है परंतु वो कैसा है, वेरिएबल। नियम रूप कौन है, कर्म का उदय, और हुआ कार्य किससे, अपने अपनी गलती से, अपने अपराध से, अपने अशुद्ध उपादान से कार्य हुआ। तो ये कर्मों का भी, यानी ये निमित्त है और उसका वो निमित्त है, उसका और कोई निमित्त होगा, तो निमित्त को ही ढूंढने चले जाएंगे। तो निमित्त से कार्य होता अगर मानेंगे तो इस निमित्त से हुआ, वो क्यों हुआ, वो उससे हुआ, वो क्यों हुआ, वो उसके दूसरे के, इसको कहते हैं वो तो ऐसी श्रृंखला चलेगी निमित्तों की।
निमित्तों की परंपरा देखनी,
परंपरा देखनी पड़ेगी पूरी। हाँ तो ये तो असंभव है, हम एक निमित्त को जुटाएंगे अभी इसका हम देख रहे हैं, इस निमित्त को हम ढूंढ रहे हैं, उसका निमित्त कहाँ से लाएंगे, वो निमित्त का निमित्त कहाँ से लाएंगे, तो ये कहाँ तक श्रृंखला चली जाएगी। तो इसको कहते हैं कि उपादान से ही होता है ना 100%, फिर वो निमित्त अपने कारण से वहाँ उपस्थित रहेगा ही रहेगा। यानी कितनी निराकुलता होगी हमें, निमित्त एक निमित्त को ढूंढेंगे हम, मान लेते उससे कार्य होता है तो उस निमित्त का निमित्त देखना पड़ेगा, उसका निमित्त, उसका निमित्त, तो ये अनंत द्रव्यों की तरफ देखना पड़ेगा अभी हमें। तो यहाँ क्या कहते देखो कि निमित्त तो परद्रव्य की पर्याय है, अर्थात परद्रव्य का कार्य है, वह भी उसके अपने द्रव्य के स्वभाव पुरुषार्थ काल लब्धि और भवितव्य के अनुसार ही होगा, जो सब निश्चित है। अन्य द्रव्य की पर्याय वह कैसे कर सकता है, इससे सिद्ध होता है कि विशिष्ट कार्य का निमित्त भी निश्चित है। यह सब स्वयं चलित यानी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। कारण कार्य व्यवस्था का रहस्य जानने से हमें वस्तु स्वातंत्र्य का ज्ञान होता है, हमारी विपरीत मान्यताएं नष्ट होती हैं। देखो क्या कहा है, हमने क्या जाना, हमने तो ज्ञान किया ना, कैसा ज्ञान किया, कारण कार्य संबंधी वस्तु में जो व्यवस्था है उसका रहस्य हमने जान लिया कि इसी से ऐसे कार्य होते हैं और ये कारण निश्चित है, ये सब हमने जान लिया। जानने का फायदा क्या हुआ, हमारी विपरीत मान्यता नष्ट हुई। तो उसके लिए कितने उपवास करेंगे और दान देंगे तो हमारी मान्यता नष्ट होगी। सही ज्ञान, हाँ सही ज्ञान करेंगे तो ही होगा, आकुलता का अंत होता है। और कर्तृत्व बुद्धि का भूत उतरने से, क्या कहा, भूत, ये हमारे कहते हैं ना इसके माथे पर भूत बैठा है कहते हैं, वैसे ये कल्पना है। कैसे, कैसी कल्पना है, कर्तृत्व बुद्धि यानी मैं पर का कर सकता हूँ ऐसी मान्यता, अपना उपयोग सहज ही पर्याय और पर्याय के कर्तापने से हटकर, अपना उपयोग कहाँ लगा है, पर्याय की तरफ, या किसके तरफ, पर्याय की कर्ता बुद्धि की तरफ, मैं उनका कर्ता हूँ ये मान्यता चल रही है, तो अपना उपयोग जो पर्याय की तरफ और वो कर्तृत्व बुद्धि की तरफ लग रहा है, वो सहज ही पर्याय और पर्याय के कर्तापने से हटकर स्व स्वभाव पर केंद्रित होता है। ये सब जानने का फायदा क्या है? कहाँ देख रहे थे अभी तक? पर्यायों की तरफ। किसकी पर्याय? स्व की और पर की। और क्या मान रहे थे? हमको ये पर्याय लानी है, ये हटानी है, उसकी वो पर्याय दूसरे को ठीक कर दूं। इसी में हमारा उपयोग हमारा बारंबार वहाँ चला रहा था। अब निश्चिंत हो गए ना, अभी करने धरने का कुछ रहा नहीं। कहाँ देखना रहा? अपने स्वभाव पर। तो तभी स्वभाव को ग्रहण कर सके। यदि ये इस संबंधी मिथ्या मान्यता होगी तब तक स्वभाव की तरफ लक्ष्य नहीं जाएगा, अपना उपयोग स्वभाव में केंद्रित नहीं होगा। उपयोग को एक जगह केंद्रित करने का नाम है ध्यान, और वो कहाँ ध्यान केंद्रित करना है? अपने स्वभाव पर। केवल हमने इसको देखते रहे एक तरह कि हमारा ध्यान हुआ, हाँ हो गया, वो स्वभाव की अनुभूति में कोई कार्यकारी नहीं, आत्मा की अनुभूति में कार्यकारी नहीं। इधर ध्यान रखो, ये करो, इधर उपयोग लगाओ, इधर उपयोग लगाओ, इधर उपयोग लगाओ, उपयोग लगेगा, मन के विकल्प कम हुए, परंतु मिथ्या भ्रमणा कम नहीं होगी उससे। भाई ये ध्यान के फैशन चलते बहुत सारे दुनिया में, उससे आत्मा का अनुभव नहीं होगा। ध्यान होना अलग बात है, वैसे तो अर्थ ध्यान करते ही ना हम सब। हम भी किसी के ऊपर हम इसको देखते रहते देखते रहते देखते रहते। अरे छोटा बच्चा भी वो टीवी की तरफ कितना ध्यान लगा कर देखता है, उसके वो कुछ चल रही ना उसकी सीरियल, हाँ सुनता भी नहीं है, सुनता नहीं है, उसके कान पर अथराते शब्द उसका उपयोग उधर है तो उसको सुनकर भी सुनाई नहीं दे रहा है, वो उसने सुना ही नहीं है। माँ भले बहुत चिल्लाई है परंतु क्योंकि वो इतना उसमें एकाग्र हो गया, एक चित्त हो गया है, तो उसका ध्यान चल रहा है। तो ध्यान करना किसी को सिखाना नहीं पड़ता है। और ये भी आत्मा के ध्यान के नाम पर अन्य अन्य ऐसी बातें चलती है, थोड़ा विकल्प मंद होता है या एकाग्र होता है तो ये सोचता है कि हमारे ध्यान हुआ, ये आत्मा का ध्यान नहीं हुआ है। क्योंकि धर्म के नाम पर ऐसे ध्यानों की चर्चा चलती है, सिखाया जाता है, तो वो तो मिथ्या भ्रमणा पुष्ट होती है उसकी। यदि उसके वस्तु स्वरूप का ऐसा ज्ञान कर लिया है तो उसके सहज वस्तु विचार के काल में ही स्वयं उसका उपयोग अपने को पकड़ लेता है। परंतु उसके लिए आवश्यक क्या है? सर्वज्ञ भगवान के स्वरूप का निर्णय प्रथम में प्रथम आवश्यक है। और हम यहाँ इस पुस्तक में जो जितने सारे से निश्चय है, व्यवहार है, निमित्त उपादान है, चटकारक है, एक एक हम सिद्धांत सीखते हैं तो वस्तु के व्यवस्था संबंधी कारण कार्य संबंधी कितना हमें बिल्कुल निराकुलता से हम उसका अगर भाव भाषण हो जाए तो उनका विचार करते करते वहां से छूटकर अपने स्वभाव को पकड़ लेता है। फिर यहाँ देखना है कि यहाँ देखना है कि इधर देखना है, वो कुछ नहीं रहता है। वो तो लौकिक ध्यान की बात छोड़ दोगे, हमें तो अलौकिक मार्ग अपनाना है। तो अलौकिक मार्ग का यानी आत्मा का अनुभव कैसे होगा, उसके लिए कार्यकारी क्या है? तो मिथ्या भ्रमणा जो चल रही है अनादि से, वो भ्रमणा छूटे बिना आत्मा का ध्यान हो नहीं सकता। ये पर का ध्यान तो चल ही रहा है अनादि से, उसमें क्या नवाई है? हाल में आती है बात। अन्य भी जो कुछ यहाँ ध्यान लगाओ वहाँ ध्यान लगाओ, वो फिर वो या वो अन्य मतियों में बहुत भ्रमणा चलती है। और आध्यात्मिक कुछ प्राप्ति हुई किसको मानते है? किसी को वो विभंग ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, पूर्व भवों का ज्ञान भी होता है, आने वाली बातें भी समझ में आती है। ये विभंग ज्ञान को अवधि ज्ञान है और उसी को आध्यात्मिक, हम आध्यात्मिक बड़े ऐसा मानते हैं। अन्य मति जो हिंदुस्तान में तो बहुत सारे चलते हैं, तो उनके कभी कभी लेख कभी देखने को आते हैं तो उसी को मान लेते हैं कि यहाँ बैठे बैठे हमने अपने अमेरिका में हमारा लड़के का पूरा हमारे ज्ञान में आ गया, क्या कर रहा है क्या, तो उसको तो कुछ वृद्धि मानते हैं, उसी को अध्यात्म में बढ़े मानते हैं। अरे तो ज्ञान का एक प्रकार है। और जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, ये मिथ्या भ्रमणा चल रही है, तो ऐसे ज्ञान से क्या फायदा है उसको? भ्रमणा तो वही वैसी की वैसी बनी रहती है, ये कोई उपलब्धि नहीं है। वो अवधि ज्ञान तो किसी को प्राप्ति होना ये कोई उपलब्धि नहीं है, उससे उसका क्या हुआ? क्योंकि उसके तो सारे मिथ्या मान्यताओं में तो पुष्टता वैसी वैसी चल रही है। आत्मा को जानने के लिए वो कार्यकारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हम, तो यदि हम इसका निर्णय करेंगे, ये निर्णय करना ही हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। और ये किस में चला है? ज्ञान में ही चला है ना। हमने ज्ञान में पहले सुना समझा ऐसा ही है, ये हम निश्चित कर रहे हैं कि देखो कैसी वस्तु की स्वतंत्रता है, उस पर विचार करना यही सम्यक पुरुषार्थ है, उसको एक्सेप्ट करना यही सम्यक पुरुषार्थ है और समय दर्शन रूपी कार्य भी प्रकट होगा। पर्याय निश्चित और उनका क्रम भी निश्चित है, इसलिए पांचों ही समवाय निश्चित होने ही चाहिए। इन सभी बातों का यथार्थ ज्ञान होने पर क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत भी अपने ख्याल में आता है। क्रमबद्ध पर्याय जो अनादि अनंत पर्याय है किसी एक द्रव्य में, उन पर्यायों का क्रम निश्चित है, वो क्रम से ही होती है और बद्ध है ने होने वाली होती ही होती है। ये कहाँ पर पड़ा है? वस्तु में ये कारण कार्य व्यवस्था पड़ी है। किसी पर्याय का नाम क्रमबद्ध पर्याय नहीं है, वस्तु में कारण कार्य व्यवस्था की जो ये पर्यायों का निश्चित क्रम अनादि अनंत प्रवाह पड़ा है और वो उसी समय होने का वस्तु का स्वयं अपने में ही वो पूरा ही सेल्फ सफिशिएंट है उसमें। अभी तो हमारे आगे कुछ शक्तियां भी देखेंगे हम, द्रव्य में प्रत्येक द्रव्य में ऐसी अद्भुत शक्तियां हैं कि अपनी पर्याय स्व समय में करें। अभी तो कितना जितना पढ़े उतना कम है ऐसा लगता है, तो कितनी निश्चिंतता आ जाती है कि नहीं वो होने वाला ही है, तो हमें उसमें इच्छा भी वैसे उत्पन्न नहीं होगी कि ये करो कि वो करो। इच्छा निरोधस तप, तप किसको कहना अंतरंग में स्थिरता, क्यों? क्योंकि वहां तो वैसी इच्छाएं नहीं उत्पन्न हो रही है, अपना भी मोक्ष जल्दी प्राप्त करो ऐसे भी इच्छाओं का अभाव हो जाता है, वो तो होने ही वाला है, उसमें क्या करे, इतनी निराकुलता हो जाती है, तभी अंतरंग में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो सकेगा, नहीं तो बारम्बार उपयोग बाहर भटकेगा उसका, तो हम खींचातानी करके उपयोग को अंदर कैसे लगावे। जब ये निश्चिंतता होती है पर्याय संबंधी, तब बिल्कुल सबसे हटकर वो स्थिरता ही करनी, और क्या करना है, बस अपने में रहो और अच्छी इंद्रिय आनंद उसमें उत्पन्न होगा, उसका अनुभव होगा। तो कहते क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत भी अपने ख्याल में आता है, उसका मर्म समझता है और उसके संबंध में उठने वाले अनेक प्रश्नों का समाधान प्राप्त होता है। अजीव द्रव्यों की पर्यायों में भी ये पांचों ही समवाय पाए जाते हैं। क्या कहा, पुद्गल में ये पांच समवाय है कि नहीं है? प्रत्येक परमाणु की अपनी अनादि अनंत पर्याय निश्चित है, किस समय वो छूटा रहेगा, किस समय उसका स्कंद होगा, कौन सा स्कंद होगा, कब कौन से जीव के शरीर के साथ शरीर रूप से होगा, कब वही परमाणु किसी जीव के कर्म रूप से होगा, तो वही जीव को भी पृथ्वी का एक शरीर रूप हुआ, कभी अन्य वो पर्याय छूटे रहते, कभी मनुष्य के शरीर रूप हुआ, कभी वही परमाणु चेंज होते होते कभी देवों के शरीर रूप हुआ, कभी वही परमाणु चेंज होते होते किसी तीर्थंकर के शरीर रूप हुआ, हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो एक एक परमाणु में अपनी अपनी पर्याय की होने की योग्यता पड़ी है स्वतंत्र रूप से, तो अजीव में भी पांच समवाय लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लगेंगे। तो अजीव द्रव्यों की पर्याय में भी ये पांचों ही समवाय पाए जाते हैं, तो फिर क्या जीव इतना पराधीन है कि उसे इन पांच समवायों को ढूंढना पड़ेगा? हम तो कहते ये तो अजीव, इसको क्या अक्कल है, हम समझे हम सोचेंगे तब इसके परिणमन कर सकते, हम चाहे इसको खोल गया, हमने चाहे ईश्वर से हमने चाहे उसका तो गीला कर दिया, हमने इसकी पर्याय बदली, नहीं, उसमें वो योग्यता होती है तो हम वहाँ निमित्त रूप से हमें वैसा भाव आएगा, परंतु तो हमें भाव आया इसलिए वो कार्य हुआ ऐसा नहीं है। जीव और शरीर में भी समझना, इतने निमित्त नैमित्तिक संबंध है, हमें ऐसा ऐसे हम चाहे जैसे शरीर की परिणति कर सकते हैं, तो रोग चाहते है तभी आया था क्या? ये वृद्धावस्था हमारी चाहने से आई क्या? तो हम चाहे तो उसको तो ऐसा बता सकते हैं ना, मेंटेन कर सकते हैं ना कि नहीं? उसकी योग्यता से उसका परिणमन चल रहा है। कभी कभी हम चाहते वैसा होता है तो कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार और पुष्ट हो जाता है, नहीं तो क्या करे, अभी तो ऐसा ही है ना, अभी ऐसे उम्र में तो ऐसा ही होगा, फिर एक्सेप्ट करता है जो अपने कर्तृत्व से बाहर लगता है, तो ये तो ऐसा ही होना है। जब विशिष्ट कार्य होने वाला होता है तब ये पांचों ही समवाय सहज आ मिलते हैं, और यदि कार्य नहीं होने वाला हो तो नहीं मिलते। अज्ञानी जीव को कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार होने से मैं कार्य करूँ तो होता है, यदि मैं न करूँ तो नहीं होता, इस प्रकार की विपरीत बुद्धि यानी मिथ्या बुद्धि रहती है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे पद पद पर अनुभव भी करते हैं, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं होते। हम विशिष्ट इष्ट संयोग की प्राप्ति के लिए मेहनत करते हैं, पैसों के अभाव में वह बात अप्राप्य लगती है। क्या कहा, हम घर खरीदना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान की बात करें तो किसी के पास पैसे का इंतजाम नहीं था, इसलिए वो घर खरीद नहीं कर सकता। अभी तो उसके पास पैसे मिल गए बहुत और घर खरीदना चाहता है, परंतु तब भी उसके चाहे जैसा घर नहीं मिल रहा, ऐसा होता है। हमने देखा है कितने लोगों का हाथ में पैसा लेके तैयार है, परंतु नहीं हो रहा है कार्य। तो पैसों का इंतजाम होने पर भी उस संयोगी की प्राप्ति नहीं होती, तब हम दीन दुखी होते हैं। ऐसे वक्त में जिनागम के सिद्धांतों का स्मरण होते ही आकुलता मिट जाती है, शांति उत्पन्न होती है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में आचार्य कार्तिकेय कहते हैं, जिस जीव का, जो हमने मंगलाचरण में देखा ना, उसी का ये ट्रांसलेशन, जिस जीव का जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस विधि से जो जन्म अथवा मरण जिनेन्द्र भगवान ने नियत रूप से जाना है, नियत रूप का ये ऐसा नहीं कि वो अभ्यास करेगा तो पास होगा, ऐसा वाला नहीं है, कंडीशनल नहीं होता। ये जीव अभ्यास करेगा मगर बीमार पड़ेगा और नहीं पास होगा, ऐसा जानेंगे जो कुछ होने वाला होगा तो? हम कैसा जानते हैं, कंडीशनल जानते हैं। बच्चों के जो अभ्यास करेगा अच्छा तो तेरा नंबर अच्छा आएगा, वैसा नहीं, वो क्या होने वाला है वो निश्चित रूप से जानते, इसलिए कहा नियत रूप से जानते। उस जीव का उसी क्षेत्र में उसी काल में उसी विधि से वह अवश्य होता है, उसे टालने में इंद्र अथवा जिनेन्द्र भी समर्थ नहीं है। इस प्रकार से जो सर्व द्रव्यों और उनकी पर्यायों को जानता है, क्या कहा, क्या हम सभी पर्यायों को जान रहे हैं? नहीं, इसी विधि से सभी पर्याय होती है, ऐसा जो निश्चय करता है। हम सभी द्रव्यों के पर्यायों को नहीं जान रहे, परंतु हम क्या जान सकते हैं कि ऐसे ही सभी द्रव्यों की प्रत्येक पर्याय जिस द्रव्य क्षेत्र में जिस विधि से जिस काल में जैसी होनी वैसे ही होती है, ऐसा जो जानता है, ऐसा जो निश्चित करता है, वह सम्यक दृष्टि है। और उसमें जो शंका करता है कि हाउ इज इट पॉसिबल, निमित्त नहीं आए तो नहीं होगा, तो शंका करता है, तो वह मिथ्या दृष्टि है। अब यही रुकेंगे हम। बोलो 2400 भगवान की।